हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सौरव बजाज की वजह से आर्यांश के दादाजी की बर्थडे पार्टी में दीवा और आर्यांश का रिश्ता सबके सामने खुल चुका था। यही वक्त था जब आर्यांश अपने और दीवा के रिश्ते को एक नाम दे सकता था, पर देखा जाए तो आर्यांश के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था जब वो दीवा से बदला ले। जब सौरव बजाज दीवा को सबके सामने लेकर आया था, तब दीवा की आंखों में उम्मीद थी कि भले ही स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आर्यांश उसका साथ देगा। आर्यांश को दीवा की इसी उम्मीद को तोड़ना था और उसने सबके सामने दीवा से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने सबके सामने ये बात तो कबूल ली थी कि वो पिछले कुछ महीनों से दीवा के साथ रह रहा है, पर उसने कभी शादी का वादा नहीं किया था। ये कहकर उसने उनके रिश्ते पर एक सवाल खड़ा कर दिया था। हर कोई दीवा को गलत नज़र से देख रहा था। पार्टी में आए कुछ बिजनेसमैन तो पैसे देखकर दीवा को अपने साथ ले जाने तक के लिए तैयार थे। आर्यांश की इस हरकत से दीवा बुरी तरह टूट गई थी। वो रोते हुए पार्टी से बाहर जा रही थी। वहीं प्रियंक को भी आर्यांश पर बहुत गुस्सा आया। वो दीवा के पीछे जा रहा था। दीवा, दीवा प्लीज लिसन टू मी, प्रियंक उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, लेकिन दीवा उससे थोड़े पहले बाहर निकली थी। 5-7 मिनट में ही दीवा न जाने उसकी आंखों से कहां उझल हो गई थी। वहीं दीवा को कोई सुध नहीं थी। आर्यांश ने जो किया था वो दीवा को तोड़ने के लिए काफी था। पहले ही उसके लिए रक्षित के धोखे से बाहर निकलना मुश्किल था। उसे कभी आर्यांश पर यकीन नहीं था, लेकिन आर्यांश ने साथ रहते हुए हमेशा साथ देने और प्यार करने का वादा किया था। दीवा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यांश इस तरह उसकी इज्जत उछालकर उसे छोड़ देगा। दीवा रोड पर बेसुध से होकर चल रही थी। वो खुद से बात करते हुए बड़बड़ा रही थी, तो तुमने भी मुझे छोड़ दिया, सबकी तरह मुझे अकेला कर दिया। उन सबकी तरह तुम्हारी नज़रों में भी शायद मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ खोकर तुमसे प्यार करती रही। उस प्रपोजल का क्या और उन वादों का क्या जब तुमने मुझे साथ देने का कहा था? क्या इस दिन के लिए तुमने मेरा भरोसा जीता था आर्यांश? अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी, मेरा साथ नहीं निभाना था, तो इस तरह प्रपोज करने और बाकी चीज़ों का दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो वैसे भी तुम्हारे थोड़े से ब्लैकमेल करने या धमकाने पर तुम्हारा साथ देने को तैयार थी। फिर प्यार का नाम क्यों लिया? शायद मुझ में ही कोई कमी है। सबको अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरे पास आना होता है। जिस दिन मतलब खत्म हो जाता है, उस दिन मैं उनके किसी काम की नहीं रहती और वे मुझे इसी तरह हर्ट करके छोड़ देते हैं। आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? क्या मैं थोड़े से भी प्यार के लायक नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे मर जाना चाहिए, दीवा ने सिसकते हुए कहा। दीवा के दिल टूटने का दर्द उस पर बुरी तरह हावी होने लगा था। पहले भी सब कुछ सहना उसकी बर्दाश्त के बाहर था और अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। सच कहो तो अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो बार बार खुद के ठुकराए जाने के दर्द को बर्दाश्त कर सके। जिस होटल में पार्टी हो रही थी वहां पास में एक क्लब था और गाड़ियां तेज गति से आ जा रही थी। दीवा को उस एक पल में न जाने क्या हो गया था जो वो अपनी जिंदगी तक खत्म करने पर चल दी थी। आर्यांश को लगा था कि दीवा गिड़गिड़ाएगी और उसके सामने खुद को ना छोड़ने की भीख मांगेगी। हालांकि दीवा ने आर्यांश की उम्मीद के हिसाब से कुछ नहीं किया था। शायद खुद आर्यांश उसे हंसा करते हुए नहीं देख पाता और अपने रिश्ते की सच्चाई बताते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता, पर दीवा ने तो ठीक से कुछ सुना ही नहीं था। उन लोगों की बातें ही उसे छलनी करने के लिए काफी थीं। दीवा ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया था। वो एक गाड़ी के सामने बिना सोचे समझे जा रही थी कि तभी प्रियंक ने उसे खींचकर दूसरी तरफ कर दिया था। वो उसे गुस्से में घूर रहा था। पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर गोयनका एक डॉक्टर होने के बावजूद खुद की जान लेने चली थी? ये दूसरी बार है जब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, प्रियंक उसे डांटने लगा। दीवा की नज़रें नीचे हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और ना ही मेरे अंदर अब जीने की इच्छा बची है। क्या वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता था? प्रियंक ने अफसोस भरे लहजे में पूछा। दीवा की आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। उसने प्रियंक की तरफ देखकर धीमी मासूम आवाज में कहा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, शायद इसी दिन के लिए वो मेरे पास आया होगा, पर क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सब मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देते हैं? मुझे नहीं पता मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। जैसे ही दीवा की बात खत्म हुई वहाँ एक तेज और सख्त आवाज़ गूंजी, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे बर्बाद कर दिया दीवा गोयनका। वो आर्यांश की आवाज़ थी। हालांकि आर्यांश यहाँ दीवा को संभालने के लिए आया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर अब उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। दीवा ने आर्यांश की तरफ देखा। आर्यांश गुस्से में दीवा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन प्रियंक बीच में आ गया था। उसने आर्यांश से शांत लहजे में कहा, आर्यांश तुम अभी अपने होश में नहीं हो, बाद में बात करते हैं, दीवा की हालत भी ठीक नहीं है। नहीं तुम करने दो उसे मुझसे बात, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा आर्यांश, क्यों मुझे इतनी उम्मीद दे दी और फिर इस तरह मेरी उम्मीदों को तोड़कर छोड़ दिया, दीवा ने सुबकते हुए कहा। प्रियंक दीवा को रोकना चाहता था लेकिन दीवा ने उसे साइड किया और आर्यांश के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। आखिर उसे भी अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। तो आज तुम्हें अपनी उम्मीदें टूटने का दुख हो रहा है और उसका क्या? उसका क्या दीवा गोयनका, जिसने तुमसे उम्मीदें लगाई थी और तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई? तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर उसे मार डाला, आर्यांश सर्द आवाज में बोला और उसने गुस्से में दीवा को अपने दोनों हाथों से काफी कसकर पकड़ लिया था। दीवा आंखों में हैरानी लिए आर्यांश की तरफ देख रही थी। उसे तो समझ तक नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यांश किस बारे में बात कर रहा है। तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें तो वो याद तक नहीं है। यहाँ मैं पल पल उसकी याद में मर रहा हूँ। गलती का एहसास करना तो दूर की बात है, मासूम बनना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है दीवा गोयनका, आर्यांश ने दांत पीसते हुए कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। आर्यांश, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और मैं पहली बार तुमसे उस क्लब में मिली थी, मुझे तो वो मुलाकात तक याद नहीं थी, दीवा ने जवाब दिया। इससे पहले कि आर्यांश आगे आकर दीवा को इस बारे में कुछ बता पाता, प्रियंक बीच में आ गया था। वो नहीं चाहता था कि आर्यांश दीवा का और दिल दुखाए। इससे पहले कि वो वापस आर्यांश को रोकता, आर्यांश ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा और कहा, हमारे बीच में आना बंद करो, हम बच्चे नहीं हैं जो तुम टीचर की तरह बीच में सॉल्व करवाने के लिए आओगे, निकलो यहाँ से। प्रियंक ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ चला गया था। वहीं आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा और उसी सख्त अंदाज में बोला, हाँ तो तुम जानना चाहती थी ना कि मैं किस बात का बदला ले रहा हूँ तुमसे और मेरी जिंदगी तुम लोगों ने कैसे बदतर कर दी। सिर्फ एक नाम बताऊंगा और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, दीवा गोयनका। दीवा आंखों में हैरानी लिए आर्यांश से वो एक नाम सुनने का इंतजार कर रही थी। आर्यांश कुछ पल रुका और फिर आह भरी। उसने धीमी आवाज में कहा, सहर गुप्ता। आर्यांश को आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक नाम सुनने के बाद दीवा हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो नहीं जानती थी कि आखिर आर्यांश उसकी बेस्ट फ्रेंड सहर को कैसे जानता है।
तुम सहर को कैसे जान सकते हो, वो तो इस दीवा अटकते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो इस दुनिया में नहीं रही है और उसका कारण तुम और तुम्हारा परिवार हो, आर्यांश ने बेहद सर्द आवाज में कहा। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उसकी जान कैसे ले सकती हूँ, दीवा ने रोते हुए पूछा। मासूम बनने का ड्रामा अभी भी कितने अच्छे से कर लेती हो ना। अच्छा, तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके मरने के बाद तुम कभी उसकी फैमिली से मिलने क्यों नहीं गई कि वे किस हाल में है, आर्यांश गुस्से में चिल्लाकर बोला। मैं कैसे जा सकती थी, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था आर्यांश, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। उस दिन मैं और सहर, दीवा आर्यांश को सफाई देने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो उसकी सुनने तक को तैयार नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ उस दिन तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था, अभी भी तुम खुद को इनोसेंट साबित करने पर तुली हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा चलो बताओ, एक्सीडेंट के बाद तुम दोनों की हालत क्या थी, आर्यांश ने चिढ़ते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आता था जब सामने वाला सच जानते हुए भी झूठ बोलता था, मासूम बनने का दिखावा करता था, मानो उसकी कोई गलती ही ना रही हो। मुझे पहले से हार्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए एक्सीडेंट के बाद मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो गया था। मैं ठीक हो गई थी क्योंकि हार्ट डोनर मिलने की वजह से मेरी सर्जरी हो गई थी, जबकि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, उसे सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया था, दीवा ने भरी आवाज में कहा। वो हादसा उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल था जिसे वो चाहकर भी याद नहीं करना चाहती थी। दीवा की बात सुनकर आर्यांश पागलों की तरह हंसने लगा था। दीवा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, वहीं दूर खड़े प्रियंक के कानों में उनकी बातें पड़ रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। अच्छा, उसकी मौत हो गई थी और इलाज सही से नहीं मिला, उसे इलाज सही से तुम्हारी वजह से नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है और एक्सीडेंट के बाद उसे भी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी थी। तुम्हारे केस में 24 घंटे का इंतजार किया जा सकता था या उससे ज्यादा भी, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन थोड़ी स्टेबल थी, जबकि सहर के लिए तुरंत ट्रांसप्लांट करना जरूरी था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हारे लिए हार्ट अरेंज करवा देंगे लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने जानबूझकर पहले तुम्हारी सर्जरी करवाई और सहर के मॉम डैड से कहा कि जिसके पास पैसे होते हैं उन्हें ही जीने का हक होता है। वैसे भी डोनर मिल भी गया तो उन्हें पैसे देने और सहर के इलाज के लिए पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उस दिन मर जाना चाहिए था। आज तुम्हें ये सांस मिली है तो मेरी सहर की वजह से और तुम उसे भूल गई। एक बार उसके घर जाना या उसके लिए दुख मनाना तक जरूरी नहीं समझा। पता है वो मुझसे तुम्हारी बातें किया करती थी, बहुत प्यार करती थी तुमसे। उसे खुद के म्यूजिक करियर से ज्यादा तुम्हारी परवाह थी क्योंकि तुम्हें म्यूजिक से प्यार था। तुम्हारी लाइफ को लेकर उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन तुमने बदले में उसे मौत गिफ्ट की है दीवा गोयनका। उसके माँ बाप की आंखों में भी बहुत उम्मीदें थीं जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तोड़ दिया था। बस मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि जिससे आप प्यार करते हो और आपके जीने और मरने का सवाल सामने वाले पर टिका हो, तब उम्मीदें टूटने पर क्या होता है। आर्यांश ने दीवा को पूरी कहानी सुना दी थी कि आखिर वो दीवा से बदला क्यों ले रहा है। दीवा को मानो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो ये कहानी पता ही नहीं थी। उसे हमेशा से यही कहा गया था कि सहर को इलाज नहीं मिला था, इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। होश में आते ही उसने नर्स से खुद पूछा था, तब यही कहा गया कि सहर के इलाज के लिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है, और वहां ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस का एक और एक्सीडेंट हो गया था जहां सहर की मौत हो गई थी। दीवा को पता तक नहीं था कि इन सब में वो कैसे उसकी मौत की जिम्मेदार हो गई।
तुम झूठ बोल रहे हो ना, दीवा ने रोते हुए पूछा।
अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं? मैं पिछले कई सालों से तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी और मुझे मरने की हालत में ला दिया था, और तुम्हें लग रहा है कि मैं अब झूठ बोल रहा हूँ, आर्यांश ने गुस्से में जवाब दिया। फिर वो दीवा के पास आया और उसके सीने पर हाथ रखकर बोला, ठीक यहीं पर दर्द हुआ होगा मेरी सहर को भी, जब आखिरी वक्त में उसे ये पता चला होगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था और उसे धोखा दिया। आज तुम्हारे साथ भी यही सब हुआ है। मैं तुम्हें वही महसूस करवाना चाहता हूँ जो आखिरी वक्त में उसने महसूस किया था। उसके लिए ये दर्द बस थोड़े टाइम के लिए था, क्योंकि वो तो चली गई, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर ये दर्द झेलना होगा दीवा गोयनका। दीवा की आंखों में आंसू आ गए थे, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दीवा कुछ देर तक ऐसे ही आंसू बहाती रही, फिर उसने आर्यांश से भरी आवाज में पूछा, ठीक है तुमने मुझसे ले लिया बदला, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बस एक बात बता दो, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था आर्यांश? दीवा की जिंदगी उसे एक सवाल पर टिकी हुई थी। वो हंसकर बर्दाश्त कर लेती अगर आर्यांश उसे ये कहता कि हाँ उसने उसे एक पल के लिए भी सही लेकिन सच्चा प्यार किया था। वो खुद तकलीफ में थी और समझ सकती थी कि जब सहर उसकी जिंदगी से गई तब आर्यांश को कैसा लगा था। उसके लिए भी ये आसान नहीं था। आर्यांश ने सख्त निगाहों से दीवा की तरफ देखा और फिर उसकी नजर दीवा के गले में पहने नेकलेस की तरफ गई, जो आर्यांश ने उसे प्रपोज करते हुए पहनाया था। आर्यांश ने दीवा के गले से नेकलेस खींचकर निकाल दिया था और वो बिना किसी भाव के बोला, नहीं मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। इतना कहकर आर्यांश वहां से जाने लगा, जबकि दीवा वहीं रोड पर घुटनों के बल बैठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थी और प्रियन जल्दी से उसे संभालने के लिए उसके पास आया। सच तो ये था कि आर्यांश के लिए ये बदला लेना और ये सब करना कितना मुश्किल था, ये वो अच्छे से जानता था। वो दीवा से बहुत प्यार करता था, पर उसकी जिद ने दीवा की ही नहीं उसकी खुद की जिंदगी भी आज बर्बाद कर दी।